धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 15।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं लोयालोयपयासं गोदमथेरं पुणोजिनं वीरम् नमिऊणखेत्तसुत्तं जहो वये संपयासेमो।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नाम का, अपना प्रकरण है क्षेत्रानुगम, और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 73 पर हम आ गए। 73 यहाँ क्षेत्र की बात चल रही, तिरियंचों में हम क्षेत्र देख रहे थे, तो सामान्य तिरियंचों की बात उन्होंने बताई पहले। अब पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त, यानी सामान्य तिरियंच देखे, पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमति, उनकी बात देखी थी हमने। यानी पंचेंद्रियों में सामान्य से तीन भेद, एक तो सामान्य तिरियंच कहने से एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब आ गए, पर्याप्त अपर्याप्त सब कुछ। फिर पंचेंद्रिय तिरियंच कहने से सभी प्रकार के पंचेंद्रिय आ गए, तो सामान्य से पंचेंद्रिय, उसमें संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त सब आ गए। फिर एक भेद बताए पंचेंद्रिय पर्याप्त, तो पंचेंद्रिय पर्याप्त में वो अपर्याप्तों को नहीं लेना है। फिर एक भेद है पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमति, योनिमति की विशेषता इतनी कि उसमें कोई समय दृष्टि जन्म नहीं लेता है, इसलिए उसके जो उपपाद वगैरह जो चौथे गुणस्थान वाले के वो पद नहीं होंगे। फिर पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तों की बात यहाँ करेंगे, अपर्याप्त है लब्धि अपर्याप्तों की बात है। अभी तक हमने सामान्य तिरियंच, पंचेंद्रिय तिरियंच, पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिरियंच योनिमति, इन सभी में गुणस्थान 1 से 5 है। यहाँ जो अपर्याप्त कह रहे हैं उसमें सारे मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ये लब्धि अपर्याप्तों की बात। अब इसके बाद हम यहाँ 73 पेज पर पहले सूत्र पढ़ेंगे ऊपर का। पंचेंद्रिय तिरिक्ष अपज्जत्ता केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य जदि भागे। पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो कहते लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। ये लब्धि अपर्याप्त जो पंचेंद्रिय है वहाँ कहाँ हो गए, तो ये तो कर्म भूमि में हो गए। अब वो तो कुछ अन्य तो उनके कुछ हो गए नहीं ना, कि विहार वगैरह तो होगा नहीं, अपर्याप्त है ना, तो उनमें कौन कौन से पद है उसको अभी बता देंगे कि पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जो कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब इस देशामर्शक सूत्र का अर्थ कहते हैं, यानी सूत्र में से क्या क्या अर्थ निकलता है वो खोलकर बताएंगे। स्वस्थान स्वस्थान यानी उनका रहने का, विहार को नहीं लिया यहाँ पर डायरेक्ट, वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात, ये विक्रिया भी नहीं होगी इनकी ना, वेदना तो उनके भी है ना, वेदना के काल में आत्म प्रदेश शरीर के बाहर फैलते हैं, इसे वेदना को लेना वहां पर। मारणांतिक बाद में बताएंगे, मारणांतिक होगा, मारणांतिक होगा, उपपाद होगा, विहार नहीं है और विक्रिया नहीं है, तो तीन पहले लिए स्वस्थान वेदना और कषाय, मारणांतिक और उपपाद की बात बाद में करेंगे। प्राप्त हुए पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, कहते सामान्य लोक आदि 4 लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उच्छेद घनांगुल को उच्छेद घनांगुल का अर्थ क्या है अश्विन भाई?
क्षेत्रफल।
देखो उच्छेद का एक अर्थ होता है हाइट, पर यहाँ उच्छेद घनांगुल जब कहते हैं,
नहीं ये तो घनांगुल हो गया, सॉरी गन गन।
तो उच्छेद का अर्थ क्या है? उच्छेद घनांगुल का अर्थ क्या है?
अरे हाइट तो पे
एक होता है प्रमाण अंगुल, एक होता है आत्मांगुल, एक होता है उच्छेद अंगुल, वो वाला उच्छेद अंगुल वाला वो अंगुल। तो उच्छेद घनांगुल यानी घन उच्छेद अंगुल।
अच्छा उच्छेद
क्षण में आई बस। तीन प्रकार के अंगुल है ना, जो उच्छेद अंगुल वाला सूच्यंगुल जिसको हम कहेंगे। सूच्यंगुल यानी रेगुलर, प्रमाण अंगुल है तो अलग से बताते हैं, ये रेगुलर अंगुल की बात है। अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल घनांगुल, उसको उच्छेद घनांगुल कहेंगे। उच्छेद घनांगुल यानी रेगुलर, ये सूच्यंगुल का घन। उच्छेद घनांगुल को पल्लोपम के असंख्यात वे भाग से खंडित करके, ये अंगुल बड़ा है क्या पल्ले बड़ा है?
अंगुल
अंगुल है, और यहाँ तो घनांगुल लिया है, क्योंकि जितने वर्ग स्थान जाने पर पल्ले आता है उतने ही वर्ग स्थान आगे जाओ तो अंगुल आता है। हमें पल्ले ने वो गड्ढा दिखता है बड़ा, और अंगुल ने ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं। अंगुल में प्रदेशों को गिनते हैं, वो संख्या बहुत बड़ी है। पल्ले का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग संख्यात बार करो तब अंगुल का प्रमाण आता है। ये संख्याएं बताने के लिए ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं उपमा वाले। तो यहाँ कहते हैं घनांगुल के, हमारा जो रेगुलर घनांगुल है उसको पल्ले के असंख्यात वे भाग से खंडित करना, यानी भाग देना, डिवीजन। जो एक भाग लब्धावे तत्प्रमा पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव की अवगाहना है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीवों की अवगाहना कितनी है? घनांगुल का असंख्यात अभाव। वो कौन सा असंख्यात है? पल्ले का असंख्यात अभाव से डिवाइड करो। तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। चार लोगों के असंख्यात अभाव, ढाई द्वीप से असंख्यात गुणा क्यों कहा? क्योंकि वो बाहरी जो कर्म भूमि है ना, स्वयंभूरमण द्वीप का आधा भाग और स्वयंभूरमण समुद्र पूरा, और उसके बाहर भी जो भूमि है वहाँ ये सारे कर्म भूमि होने से वहाँ पर्याप्त जीव होगी। वो तो बहुत बड़ी एरिया है। हो गए, क्योंकि कर्म भूमि है ना वहाँ पर, इसीलिए असंख्यात गुणा का, ढाई द्वीप से असंख्यात गुणा इसीलिए कहा। अब कहते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव, अपर्याप्त है ना, तो अपर्याप्त है तो उसके विहारवत स्वस्थान नहीं है, क्योंकि विहार गति नाम कर्म का उदय तो पर्याप्त जीवों के चाले, यानी शरीर पर्याप्ति के बाद शुरू हो जाता है। विहार गति नाम का एक नाम कर्म है, उससे क्या होता है, जीव चलता जो है वो विहार गति, प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, ये दो प्रकार होते हैं। इनके तो होगा नहीं उसका उदय, अपर्याप्त जीवों के वो तो उसका उदय भी नहीं होगा, और वैक्रियक समुद्घात भी नहीं पाया जाता, क्योंकि विक्रिया कब करेंगे तो पर्याप्त जीव करेंगे, तो इनको वैक्रियक समुद्घात भी नहीं होगा। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए, मारणांतिक समुद्घात कब? अब ये जो पंचेंद्रिय जो अपर्याप्त है, लब्धि अपर्याप्त, वो मरण के पहले जहां जन्म लेना है। तो मेरा ये प्रश्न है, ये पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? ब्रह्मा आपको बताना है, उत्पन्न होंगे कहाँ कहाँ, जन्म लेंगे? ब्रह्मा आप सोच सकती है, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीव मरकर किसमें जन्म ले सकते हैं, ये आपको सोचना है। देव में, नरकी में, मनुष्य और तिरेंच हो गए, सारे एक इंद्रिय में कहीं पर भी लोक के कहीं किसी कोने में जाकर जन्म ले, पूरे लोक में, क्षेत्र की अपेक्षा पूरे लोक में, और पर्यायों की अपेक्षा नारकी और देवों में नहीं जाएंगे। बाकी मनुष्य तिर्यंच में किसी भी जो उसका भेद है उसमें चले जाएंगे। और कहाँ से मरकर आएंगे लभ्य अपर्याप्तकों में?
कहाँ से मरकर
आएंगे? देव नरक से आएंगे क्या?
नहीं,
परंतु कहीं से सूक्ष्म भी जो उसमें आ सकते हैं,
पूरे लोक
में से इसमें जन्म ले सकते हैं, परंतु इनकी संख्या असंख्यात होने से पूरा लोक ऐसा इसलिए नहीं कहेंगे, क्यों अनंत जीव तो उत्पन्न नहीं हो गए एट ए टाइम जन्मने वाले, एट ए टाइम मरने वाले जो असंख्यात है, तो कहाँ तक मारणांतिक करते हैं उसके एरिया गुणा उसके अवगाहना इंटू उसकी मरने वाली राशि, अब उसको बताएंगे हम, देखेंगे मनुष्य और तीर इंच नरक और देव में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपर्याप्त जीव देव और नरक में जाने वाले पंचेंद्रिय पर्याप्त होने चाहिए, वही देव गति नरक गति देवायु वगैरह बांधते, अपर्याप्त जीव नहीं। यानी जो पर्याप्त नाम कर्म वाले भी है वो अपर्याप्त अवस्था में देवगति को नहीं बांधते है ना। अब ये कहते हैं पेज नंबर 73, ये जो बीच वाला पैराग्राफ है ना उसकी सातवीं लाइन, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद का अर्थ होता है जन्म का पहला समय। ये बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि वो कभी कभी क्या अर्थ ख्याल में नहीं आता, तो क्या चल रहा है ख्याल नहीं है, उपपाद होना है ना जन्म लेना, तो जिसने मारणांतिक करके पहले प्रदेश फैलाए है, मान लेते दो मोड़ वाले मर गया तो क्या होता है, पहले मोड़ तक प्रदेश चले गए पहले समय में, तो वो दूसरा मोड़ से वो शरीर तक तो वो तो प्रदेश फैले हुए ऐसे ही है, तो उसके एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कहते द्वितीय दंड, क्योंकि प्रथम दंड के प्रथम मोड़ तक तो प्रदेश जा चुके एक ही समय में, क्योंकि वहां तक मारणांतिक में पहला दंड दूसरा दंड जितने दंड हो गए वो कहेंगे, परंतु उपपाद में तो पहले मोड़ तक प्रदेश पहुंच चुके हैं, अभी दूसरे समय में दूसरे मोड़ तक जाएंगे, तो ये प्रदेश ऐसे फैले हुए हैं, यानी जहां तक जहां जन्म लेना है वहां तक फैले हुए हैं। तो कहते मारणांतिक और उपपाद को प्राप्त हुए पंचेंद्रिय तिरंच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? कहते सामान्य लोग आदि तीन लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। आप कहेंगे वो पूरे मरकर कहीं पर भी जाते हैं लोक में और कहीं से भी मरकर आ सकते हैं, परंतु एट ए टाइम कितने करेंगे? जो राशि है उसमें से मरने वाले तो उसके कम हो गए, क्योंकि उनकी आयु अंतर्मूर्त की है, पर मरण का समय तो एक है, एक समय का, ये उसके असंख्यात भाग प्रमाण मरेंगे और उसमें से असंख्यात बहुभाग मान लेते मारणांतिक भी करेंगे, तो मारणांतिक करने वाले या उपपाद उसमें जन्म लेने वाले जो असंख्यात से ज्यादा नहीं हो गए और उनकी अवगाहना ऐसे भी कम होती है, तो ये पूरा लोक कवर नहीं होगा। स्पर्शन में हम उसको पूरा लोक, तो स्पर्शन की बात बाद में देखेंगे, स्पर्शन क्या होता है उसकी चर्चा बाद में, अभी तो क्षेत्र की चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी उसका कारण बता रहे। राशि के भागहार रूप होकर, राशि का भागहार यानी जो टोटल राशि है पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों की, उसको किसी संख्या से भाग देंगे, होकर यथाक्रम से अर्थात मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा दो बार पल्योपम के असंख्यात भाग और उपपाद की अपेक्षा तीन बार पल्योपम का असंख्यात भाग पाया जाता है। क्या कहते हैं? जितनी राशि है उसको पल्ले का असंख्यात भाग एक बार भाग दो तो उसमें से मरने वालों की मारणांतिक की बात है, मरने वालों की बात। मूल राशि यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त राशि जो असंख्यात है, वो असंख्यात ही भाग तो वो मारणांतिक समुद्घात वाली राशि में, क्योंकि एक बार करने से मरने वाले मिलेंगे, दो बार करने से मारणांतिक करने वाले मिलेंगे, मूल राशि का वो भाग निकालना है। पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी संख्या निकालनी है तो टोटल संख्या बहुभाग स्वस्थान वाले होते हैं, फिर जो संख्यात्वा भाग होता है उसमें से हम अलग अलग करते हैं उसके वेदना कषाय वगैरह, अब मरने वाले कितने हो गए टोटल राशि के, क्योंकि टोटल राशि है वो तो अंतर्मूर्त प्रमाण उनकी आयु है। अब मरने वाले जो जीव है, जीने वाले ज्यादा हो गए कि मरने वाले ज्यादा हो गए?
जीने वाले। हाँ,
एक समय में मरने वाले उसका असंख्यातवा भाग है, उसमें से मरणांतिक करने वालों की बात लेनी है, फिर दोबारा उसको भाग देना है। पहले हमने भाग देके फिर बहुभाग किया, फिर भी उसका इन जनरल उसकी सिंबल बनाना है, तो दो बार पल्ले का असंख्यातवा भाग भाग दे। अब मरणांतिक करते हैं तो भी अंतर्मूर्त प्रमाण काल में करते, उपपात तो एक समय का है, इसे और एक बार पल्ले का असंख्यातवा भाग से भाग देंगे तो उपपात की संख्या आती है। हाँ देखो, हाँ मूल राशि वाली जो असंख्यात है, ये मूल राशि हम राशि लिखेंगे डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यातवा भाग, और एक बार पल्ले का असंख्यातवा भाग। नहीं नहीं, ये राशि पंचेंद्रिय तीर्यंश अपर्याप्त,
पल्ले का असंख्यातवा भाग किया वो
मरणांतिक, ये मरने वाले,
मरने वाले
दो बार करना तो मरणांतिक के, और तीन बार करेंगे तो उपपाद वाली राशि है, उपपाद वाली, ये मारणांतिक वाली,
और तीन बार करें
और ये उपपाद वाली। नहीं नहीं नहीं, ये मूल राशि वाले जो है वो असंख्यात संख्या है ना, कुछ भी आप उसको लिखना है तो असंख्यात लिखो ना, पर वो बड़ा वाला असंख्यात होगा, ये बड़ा वाला असंख्यात है, उसको इससे भाग दिया।
ऐसा नहीं होगा ना, पल्ले का असंख्यात को ट्वाइस दो बार मूल राशि को डिवाइड करने से मारणांतिक,
तीन बार,
तीनों बार डिवाइड
असंख्यात। हाँ
हमने टोटल राशि प्रतर जगत प्रतर के असंख्यात में काटा, टोटल पंचेंद्रिय अपर्याप्त राशि जगत प्रदर का असंख्यात्व।
हाँ, वो जो राशि उसको इसके भाग देंगे, ये राशियों की संख्या हमने डिटेल में निकाली थी ना,
दो
अभी तीसरे पुस्तक में।
तीसरा भाग करेंगे,
तथा अभी नीचे से तीसरी लाइन उस पैराग्राफ की, तीर्यक लोक और मनुष्य लोक से असंख्यात गुण एक क्षेत्र में, क्योंकि मारणांतिक करेंगे तो खाली रहते तो तीर्यक लोक में है, मारणांतिक तो पूरे लोक में कहीं पर भी हो सकता है, कहाँ रह रहे, मध्य लोक में मारणांतिक करके वो सात राजू इधर सात राजू नीचे कहीं पर भी वो एक इंद्रिय में जा सकते हैं ना, कहीं पर भी जा सकते हैं, यानी राजुओं में उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसलिए लोक के असंख्यात गुना हो जाएगा। तो कौन सा, तीर्यक लोक, तो कहते तीर्यक लोक और मनुष्य लोक से असंख्यात गुण एक क्षेत्र में, जो तीर्यक लोक से असंख्यात गुण है तो मनुष्य लोक से असंख्यात गुण है ही, एक्चुअली उनका रहने का ठिकाना ही मनुष्य लोक से असंख्यात गुण है, तो मारणांतिक करके तो होगा ही, उसमें कुछ अलग से बात नहीं। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद के प्राप्त, उपपाद को प्राप्त के, उपपाद के प्राप्त, उनकी हिंदी ऐसी होती है, पंचेंद्रिय तीर्यंश अपर्याप्त जीव रहते हैं, इस प्रकार इसका व्याख्यान सुगम है। ये क्या कहना चाहते हैं, ये ख्याल में लेना है हमको, वो संख्या हमारी याद में नहीं रहेगी, क्या किया क्या क्यों किया, इतना ख्याल में लेना है। अब हमने नारकी की बात देखी, तीर्यंशों की देखी, अब मनुष्यों की देखेंगे, मनुष्य कितने हैं टोटल, लब्धि अपर्याप्त को भी लेना तो असंख्यात होते, पर्याप्त मनुष्य संख्यात है, लब्धि अपर्याप्त असंख्यात होते हैं, जब सामान्य से मनुष्य कहेंगे तो सबको लेना एक साथ। देखो अभी सूत्र पढ़ेंगे, मनुष्य गदीय, मनुष्य मनुष्य पज्जत, मनुष्य निशु, तीर्यंशों में हमने कितने भाग किए, सामान्य तीर्यंश, पंचेंद्रिय तीर्यंश, पंचेंद्रिय तीर्यंश पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीर्यंश योनिमति और अपर्याप्त, पांच भेद किए। मनुष्यों में एक सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य, तीन भेद करने, तो मनुष्य गदीय, मनुष्य मनुष्य पज्जत, मनुष्य निशु, मिच्छा इट्ठी पहुड़ी, जाव अजोव केवली, गुणस्थान कौन से, अभी
एक से
चौदह तक मनुष्य गति की बात है ना अभी। हाँ, केवड़ी खेतते कितने क्षेत्र में हो गए, लोगस्य असंख्य यदि भागे, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र कितना छोटा है, लोग का असंख्य तो भाग है। अब इसको समझाएंगे। अभी हिंदी पहले सूत्र का अर्थ देखते हैं। मनुष्य गति में, मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में, मनुष्यनी कहने से स्त्रीवेदी, जब स्त्रीवेदी कहते हैं तो द्रव्य से, शरीर से पुरुष होकर भी, भाव से जो स्त्री है उसको भी लेना और द्रव्य से स्त्री उसको भी लेना, वो भी भाव से स्त्री है। इस तरह से ये मनुष्यनी की संख्या निकालेंगे। और मनुष्यनी भले हो, भाव से ऐसा होने पर भी पुरुषार्थ करके मुनि होकर मोक्ष भी जा सकते, परंतु द्रव्य से पुरुष है तभी। जो द्रव्य से यानी जो स्त्री जिसको हम कहेंगे, महिला जिसको कह रहे थे हम, तो उनके पांचवें गुणस्थान तक होता, उसके ऊपर के गुणस्थान उनके नहीं है। और मनुष्यनी कहेंगे, मनुष्यनी में भाव वेद की बात आती, तो उनके 14 गुणस्थान, क्योंकि 9वें तक वेद का उदय है, बाद में अपगत वेद होते हैं और श्रेणी चढ़ के मोक्ष भी जा सकते। उनमें क्या विशेषता है, जो मनुष्यनी है उनमें क्या क्या नहीं होता है, वो आहार की वृद्धि नहीं होगी, उनके आहार शरीर नहीं बनाएंगे, वो ख्याल में आती है बात, वो मनोपरिज्ञान नहीं होता, परिहार विशद नहीं होती, अन्य अन्य बातें, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे।
यहाँ आपने कहा अभी कि द्रव्य से जो स्त्री है यानी जिसको आप महिला कहेंगे, उसको पांच ही गुणस्थान होते हैं, ऊपर के गुणस्थान नहीं होते हैं। तो हमने तो सुना है कि हौदे में बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कौन सी बात सच है, कैसा समझना, हमको कंफ्यूजन होता है।
प्रश्न समझ में आया कि स्त्री को भी केवल ज्ञान हुआ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, किसी मरुदेवी माता को आप मानते हैं, तो क्या यह सच है कि नहीं है, आपको निर्णय करना है कौन सी बात सच है। कोई कहते नहीं होता है, कोई कहते नहीं होता, तो ये हमको तो निर्णय करना है क्या सच है। वो तो द्रव्य से स्त्री थी ना, माता कह रहे हैं, हाँ, तो उनको केवल ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे अभी तो हमने बताया पांचवें गुणस्थान के ऊपर नहीं होता, और केवल ज्ञानी तो 13वें-14वें गुणस्थान वाले हैं, तो जो केवल ज्ञानी होते तो उन मोक्ष निश्चित है, तो स्त्री पर्याय वालों को मोक्ष नहीं होता। हाँ, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगी, देव में जाएगी तो पुरुष हो जाएगी, फिर लौट कर जन्म लेगी तो पुरुष ही होगा वो, और फिर मोक्ष उसमें भाव में हो सकता है। स्त्री के रहने, स्त्री जो है द्रव्य से जिसको हम बार बार कह रहे हैं, उसके उस पर्याय में मोक्ष नहीं, पांचवा गुणस्थान तक का पुरुषार्थ होता है। इसके लिए कर्णानुयोग के बहुत सारे अभी हमने नियम देखे हैं, समझ में आते हैं? तो कौन कहाँ तक का पुरुषार्थ उसके होता है, क्यों क्यों नहीं होता, तो शपक श्रेणी कौन चढ़ते हैं, उत्तम कौन सा, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला, कर्म भूमि की स्त्रियों में ऊपर के तीन सहनन तो होते नहीं, नीचे के होते, उसमें भी मेजॉरिटी तो छठा ही होता है, पुरुषों को भी छठा ही होता है इस काल में मेजॉरिटी। इस काल में, पंचम काल में क्यों नहीं कोई श्रेणी चढ़ते हैं
नीचे के?
अरे उपशम श्रेणी भी नहीं कोई चढ़ेगा, शपक की बात छोड़ो, क्योंकि पुरुषों के भी ऊपर के तीन सहनन इस काल में नहीं पाए गए, चौथे काल में होते हैं भरत क्षेत्र में, क्योंकि चौथा काल तो हमेशा विदेह क्षेत्र में तो हमेशा रहता है। आप कहेंगे स्त्री को वज्रोषभ नाराज सहनन हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, भोग भूमि के स्त्रियों को होता है वज्रोषभ नाराज सहनन, पर वहां गुणस्थान चौथा, पुरुष हो या स्त्री हो, यानी कोई सहनन हमको मोक्ष नहीं ले जाता। परंतु ये सारे ही नियम ऐसे हैं, निमित्तों से कार्य नहीं होता है, पर उचित निमित्त के प्रेजेंस में ही वो कार्य होता है। इसलिए निमित्तों की तरफ देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं, इसको कहते हैं। निमित्तों की चर्चा क्यों होती है शास्त्र में? निमित्त कौन सा है उसको देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं। इसका हम ऑर्डिनरी उदाहरण लेते हैं, जिसकी देव संबंधी मान्यता सही नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन किसको होता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की सच्चा है, श्रद्धा है, सात तत्वों की प्रतीति है, स्वपर का भेद विज्ञान है, आत्मा का अनुभव है, उसको सम्यक तो है। तो अभी जो अभी वो पीपल वर की पूजा कर रहा है और कुदेवों की रागी देशी देवताओं को देव मान रहा है, दंतरों के पूछे उनका जो कुछ अर्घ्य चढ़ा रहा है, तो उस जीव को हम मानेंगे, इसको समय दर्शन है? तो कहेंगे वो तो कुदेवों की, अभी सच्चे देव कौन है उसका निर्णय नहीं है, तो उसको समय कैसे होगा? सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा ने पूरा ही मोक्ष मार्ग क्लियर होना चाहिए। जब यहां बताते हैं कि स्त्री को मुनिपना या अरहंतपना हो ही नहीं सकता, पांचवा गुणस्थान तक हो सकता है। अभी स्त्री पर्याय में किसी को केवल ज्ञान हुआ मानना, ये भगवान की अविनय है, अवर्णवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चे देव और इनके साथ हमने कंपैरिजन किया और हमारी मति कल्पना से ऐसा कुछ मनगढ़ंत बातें शास्त्र में लिख दी, खोटे शास्त्रों की रचना कर दी, इसलिए भोले लोग उसी को सच मानने लगे, क्योंकि सही क्या वो कभी सुना नहीं था, और जिस पंथ में जिस कुल में जन्मे तो यही बात सुनी थी, इसलिए वही सच लगने लगती, ख्याल में? तो ये हमारी जवाबदारी है कौन सा सच और कौन सा झूठ, हम स्वयं निर्णय करें। ये बहुत बार मैंने इसके बारे में मल्लिनाथ के बारे में भी बताया था, उसको भी स्त्री कहते, तो हमने देखा कि कोई भी जीव सम्यक्त्व के साथ स्त्री पर्याय में जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा?
नहीं।
हमने तीरियन चिन्ह के भी बारे में देखा ना, वो कोई सम्यक्त्व उसमें सम्यक्त्व लेकर वहां नहीं जन्मता, स्त्री पर्याय में भी कोई सम्यक्त्व लेकर जन्म नहीं लेता। तो मल्लिनाथ के तो पांच पांच कल्याणक हुए थे, गर्भ कल्याणक हुआ था कि नहीं हुआ था? तो तीर्थंकर पदवी यानी तीर्थंकर कर्म बांधते बांधते आए थे माँ के पेट में, पूर्व भव से तीसरे भव से बांधते रहे थे, तो पुरुष पर्याय में ही जन्मे थे, द्रव्य से भी और भाव से भी। कहाँ से आए थे मरकर? तो अपराजित से आए थे, वहां तो सारे पुरुष ही होते, वहां कोई स्त्री होती ही नहीं है, तो उसके एक भव पहले भी पुरुष थे, और वहां कौन जाते हैं? तो मुनिराज ही मरकर जाते हैं, तो उस भव में भी पुरुष थे, उसके पहले भी भव में हुए होंगे, हमें उससे क्या लेना देना? तीन तीन भव तो हम डायरेक्ट सिद्ध कर रहे हैं, फिर भी उसको स्त्री है ऐसा मानते हैं, तो इसको कहेंगे देव संबंधी सच्ची श्रद्धा नहीं है। और हमें अपने में अपना आत्मा का अनुभव करना है, उसके लिए फॉरमोस्ट कंडीशन है कि पहले देव का सही निर्णय होना चाहिए। लोगों को लगता नहीं आप अपहट है, आप हमको ही होगा, ऐसा नहीं है। अरे हम तो जीव है और हमें अपना अनुभव करना है, तो उसके लिए जो प्राथमिक आवश्यक जो कंडीशंस है उसको तो हमें निर्णय करना पड़ेगा। दुनियादारी में कितने अच्छे, वो ट्रीटमेंट लेना है तो डॉक्टर, कोई भी ऐसा बोगस डॉक्टर चलेगा क्या? वो तो रस्ते पर भी बैठते हुए थे, वहां तो स्पेशलिस्ट चाहिए, चार लोगों को पूछेंगे ये अच्छा है कि नहीं अच्छा, ध्यान में आते हैं भाई? हाँ,
एक क्वेश्चन था, निर्ग्रंथ सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव निर्ग्रंथ मुनि दशाएं धारण करेंगे ना?
आपका ये प्रश्न है, सम्यक दृष्टि जीव निर्ग्रंथ मुनि दशा ही धारण करेगा ना, ऐसा प्रश्न क्यों आया? दूसरी कौन सी मुनि दशा होती है? कपड़े वाली
नहीं, हाँ सॉरी,
सम्यक दृष्टि है नहीं, वो मुनि संबंधी श्रद्धा सच्ची हुई तभी तो वो सम्यक दृष्टि हुआ।
नहीं बराबर है, पर वहाँ सम्यक प्राप्त हुआ और
सम्यक प्राप्त हुआ,
मोक्ष की अपेक्षा उन्होंने कुछ ऐसे परिणाम हो गए तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे।
बिल्कुल, आप कहते हैं तो फिर उनके परिणाम बिगड़ गए, उन्होंने कपड़े सहित अपने को मुनि मान लिया, तो कहते वो मान्यता जब भी हुई तभी से मिथ्यात्व में गए, वो कपड़े बाद में पहनेगा सफेद। सम्यक चौथे गुणस्थान में रहते हुए उसने सफेद वस्त्र पहन ले, उसमें कुछ बात नहीं, कोई भी वस्त्र पहन सकता है, लाल पहने या सफेद पहने, परंतु अपन मुनि मान रहा है ये आप कह रहे हैं।
वो मुनि कहलाता है,
मुनि कहलाता है, कहलाता है ने, लोग कह रहे हैं कि वो अपने को मान रहा है,
वो धारण करता है तो वो अपने उसकी मान्यता में भी दोष आ गया।
हाँ, मान्यता में दोष है, आपकी नजर के सामने कोई है क्या है? ऐसा प्रश्न क्यों आया आपको? और बाद में वो कपड़े से एक मुनि अपने को मानने लगा, ऐसा पूछ रहे? हाँ ऐसा, वो तो सही शक्य ही नहीं है ना, मिथ्या दृष्टि हुए बिना कैसे मानेगा वो? कौन है आपके नजर के सामने? कांजी स्वामी?
नहीं काजी स्वामी तो अपने को मुडी नहीं कहलाते थे।
हाँ, तो कोई दूसरा कोई है आपका?
नहीं नहीं, जो अन्यमति में हम लोग देख रहे हैं जो अपने को मुनि मान रहे हैं।
अरे अन्यमति में ना उनको देव की मान्यता का ठिकाना है, अपने की मान्यता जो देव का भी ठिकाना नहीं, ना मुनि का ठिकाना है मान्यता का। ना देव सही है, ना गुरु सही है मान्यता, ना शास्त्र की मान्यता, क्योंकि छोटे शास्त्रों की रचना हुई है सारी, उसी को सच मान रहे हैं।
आपका ऐसा पूछना है कपड़े सहित कोई मुनि हो सकेगा कि नहीं, ऐसा ही कह रहे हैं ना?
नहीं, सम्यक दृष्टि जीव बाद में कपड़े धारण करके अपने को मुनि मानेगा कि नहीं, ये कह रहे हैं?
बिल्कुल नहीं। और आपके सामने ऐसे कपड़े वाले कोई जो जिनको मुनि कहलाते हैं, ऐसे जो कोई व्यक्ति है जो आपने बोला कांजी स्वामी को, वो तो
नहीं नहीं, उनको वो नहीं मान रहे, वो अन्य की, अन्य अन्य जीव।
नहीं नहीं, वो जो कहने वाले वो गलत है। पहले तो पहले की जो स्वयं सम्यक दृष्टि है उसके तो यथार्थ श्रद्धान हुआ, जब
तो सम्यक दृष्टि नहीं
हुआ। और वो बाद में कपड़े पहन के स्वयं को मुनि नहीं कहलाएगा। और हम तो कांजी स्वामी जी की बात बताते, वो तो हमेशा कहते थे कि हमें तो मुनियों न दासानुदास छे, मुनि छे, ऐसा थोड़ी बोलते थे।
वो तो अविरत सम्यक दृष्टि है।
और बाद में ये भी बताते
थे, मैं इतने व्रती करूँ,
ये भी बता लोग क्या है कि वो पहले के यानी पूर्व अवस्था में मुनि थे, इसलिए मुनि महाराज 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 ऐसा उनको कहते थे। पर वो
नहीं, मुनि महाराज नहीं बोलते थे कोई उनको,
लोग मुनि भी कहते थे उनको।
वो तो
अपोनेंट, अपोनेंट
वो क्या है, यहाँ आए तो लोगों को दिगंबरों को ऐसा लगा
सच्चे तो वो
कि वो अपने को कपड़े सहित मुनि मान रहे, ऐसे यहाँ के लोगों को लगा। वो क्या मानते थे उनको जाके कभी पूछा ही नहीं उन्होंने, समझ में? या वो क्या कहते थे उसको सुना नहीं, ऐसे अपने मन गढ़ंत बातें उठाई। अब उनको जाके आज 35 साल हो गए, अभी भी उनके नाम से विरोध चल रहा है, यानी कितनी मूर्खता चल रही होगी, या कितने डरते होंगे कि उनका शास्त्र मत पढ़ो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो ऐसा नहीं कहता कि टीवी मत देखो, अश्लील साहित्य मत पढ़ो, अरे कांजी स्वामी का मत पढ़ो, ये कहेंगे। क्यों? मूल है, पर ये कौन समझता है? सामान्य जनता जिसको कुछ मालूम नहीं है तो उनकी ऐसी मान्यताओं को और पुष्ट करते हैं। खोटा अपप्रचार होता है एक दूसरे में, अभी उससे कुछ लेना देना नहीं हमारा, वो विषय नहीं अभी का। हमें देव संबंधी गुरु संबंधी अपनी मान्यता सही होनी ही चाहिए। अब दुनिया जो कुछ मान रही वो मानने दो, वो तो मानने ही वाले हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कम हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं, वो तो हमेशा उसमें अनंत जीव रहेंगे। खोटी मान्यता वाले हमेशा ही रहेंगे, समझ में? वो जब सुधरेंगे, जब उनकी उपलब्धि आएगी तभी उनकी मान्यता सही हो जाएगी। हमें मुख्य बात अपनी सोचनी कि हमारी मान्यता सही हुए बिना वो कितना ही सामायिक करो कुछ नहीं, वो कुछ हाथ नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कहेंगे हम। क्योंकि हुआ है ना, मूल में ही भूल है, मूल में भूल है। अब यहाँ कहते देखो, ये मनुष्यों की बात हो रही थी, मनुष्यों में तीन प्रकार बताए। सामान्य मनुष्य कहने से लब्धिया पर्याप्त भी आए, पर्याप्त मनुष्य सब कुछ आ गए, उसको सामान्य कह दिया, मनुष्य पर्याप्त कह दिया। मनुष्य पर्याप्त में भी दो प्रकार से कथन आते हैं, पर्याप्त कहने से सारे पर्याप्त लिए, उसमें अपर्याप्त नहीं लिए, तीनों ही वेद वाले। या ऐसा भी कथन आता है कि पुरुष वेदी और नपुसक वेदी इसमें लिए, और मनुष्यनी में स्त्री वेदी जीव को। जब यहाँ वेद की चर्चा चलती है तो ये भाव वेद की ही अपेक्षा बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, 74 पेज पर आ गए हम। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, हमने क्या देखा, इसमें तो गुणस्थान कितने, 1 से 14, उसमें स्वस्थान स्वस्थान विहार व स्वस्थान, क्योंकि मनुष्य रहेंगे भी दाई द्वीप में, विहार करके भी उसके बाहर तो जा नहीं सकते, इसी में करेंगे। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घात को प्राप्त हुए मनुष्य। वैकृत समुद्घात यानी औदारिक से साथ जो विक्रिया होती है उसकी बात, वैकृत रिद्धिधारी भी होते हैं, या जो कुछ मनुष्य भी विक्रिया से दूसरा शरीर बना सकते हैं। पर्याप्त मनुष्य ने, मनुष्य पर्याप्त जिसको कहते हैं, और मनुष्यनी, उसमें गुणस्थान बता रहे मिथ्या दृष्टि जी, क्योंकि एक एक गुणस्थान की चर्चा चलेगी। कितने क्षेत्र में रहते हैं सामान्य लोग आदि चार लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, मनुष्य क्षेत्र के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों के क्षेत्र का ग्रहण किया है, इसलिए लोक का संख्यात भाग कह दिया। मैं कहती हूँ लब्धि अपर्याप्त कितने क्षेत्र में रहते हैं? पूरे मनुष्य लोक में रहेंगे? हाँ, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त लोक का तो ठीक है, मनुष्य लोक का कितना भाग होगा?
संख्या तो भाग है।
लब्धि अपर्याप्त कहाँ पाए जाएंगे?
ये कर्म भूमि में
ना, भोग भूमि में है ना, कर्म भूमियों के म्लेच खंडों में है,
आर्यखंड की
सभी आर्यखंड
की महिलाओं के
और आर्यखंडों की भी महिलाओं के कुछ अंकों में, यानी उनका रहने का ठिकाना तो छोटा हो गया ना, अवगाहना भी छोटी हो गई, परंतु यह संख्या तो अभाग तो पर्याप्त उनकी अपेक्षा, मुख्यतः उनकी अपेक्षा से बता दिया, क्योंकि सामान्य कहने से जो बड़ी एरिया होगी उसको यहाँ लेंगे, तो पर्याप्त मनुष्य अधिक क्षेत्र में रहेंगे ना, भोग भूमि में भी रहते हैं और फिर सारी उनकी जो म्लेंचों में भी रहते हैं, अंतर्द्वीपों में भी रहते हैं, वो सब उसमें ले लेना उसमें,
तो भी संख्या तो अभाग।
हाँ, फिर भी संख्या तो अभाग।
अपर्याप्त तो क्या है?
असंख्या। अपर्याप्त का असंख्या तो अभाग नहीं,
मनुष्य का
उसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि अपर्याप्त मनुष्य नाम का वो अलग से नहीं बताए ना, अलग से बताएंगे। देखो शंका
नहीं,
लोक का संख्या तो अभाग, पर्याप्त उनकी अपेक्षा। देखो जब हम कहते कर्म की स्थिति की, लोक का नहीं, मनुष्य लोक का,
मनुष्य लोक।
अपर्याप्त उनकी बात इसलिए नहीं ली, पर्याप्त अधिक क्षेत्र में रहते इसलिए उसकी बात। अपर्याप्त तो कहाँ हो गया? आर्य खंडों में, और पर्याप्त मनुष्य म्लेच खंडों में भी, आर्य खंडों में भी, भोग भूमि में भी, कुभोग भूमि में भी होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा एरिया ज्यादा। जैसे हम कहेंगे कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है?
70।
कौन से कर्म की है?
मिथ्या
तो की, बाकी तो नाम गोत्र की तो 20 करोड़। तो जिसकी ज्यादा है उसकी कहेंगे ना, तो कर्म इन जनरल कहने से जिसकी ज्यादा है उसकी कर्म में कहेंगे। ऐसे यहाँ पर्याप्त की एरिया ज्यादा है तो उसकी अपेक्षा से यहाँ बता दिया, इतनी बात कहते हैं। आगे बढ़ते शंका, अभी शंका कर वही पूछ रहे हैं। अपर्याप्त मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है, पर्याप्त मनुष्य तो संख्यात है, तो कहते हैं इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो इसको इसका क्षेत्र लेना चाह, क्योंकि राशि मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना करते हैं, अतएव यहाँ उनके क्षेत्र का ग्रहण क्यों नहीं किया, ये प्रश्न है। पर्याप्तों का क्यों कहा, इसका क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य का अवस्थान अंगुल के संख्यात भाग में अथवा संख्यात अंगुलों में पाया जाता है, यानी उनकी अवगाहना, मनुष्यों की अवगाहना कितनी है?
मिनिमम
अंगुल का संख्यात भाग है संख्यात अंगुल, इसलिए यहाँ पर अपर्याप्त मनुष्यों के क्षेत्र का ग्रहण नहीं किया। भले उनकी संख्या ज्यादा है परंतु उनकी एरिया तो अंगुल का असंख्या तो अभाग होगी। अपर्याप्त मनुष्यों की अवगाहना, ये तो आंखों से दिखे भी नहीं ना, इतना अंगुल का असंख्या तो अभाग प्रमाण उसकी अवगाहना होगी, इसलिए भले उनकी राशि ज्यादा है उसका ग्रहण नहीं किया यहाँ पर। अब कहते हैं मारणांत, पहले ऊपर क्या क्या लिया, स्वस्थान विहारवत वेदना कषार वैक्रिक, अब मारणांतिक समुघात को प्राप्त हुए मनुष्य, मारणांतिक करके कहाँ कहाँ जा सकते, पूरे लोक में कहीं पर भी जा सकते। मनुष्य पर्याप्त, ये पर्याप्त मनुष्य है ना, उसके बदले मनुष्य पर्याप्त कहने की पद्धति है। पहले भी हमने सूत्र में मनुष्य पर्याप्त देखा था ना, तो वैसे लिखना चाहिए था। और मनुष्य ने मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टियों की बात है, कितने क्षेत्र में रहते हैं, यानी मारणांतिक समुद्रात वाला उनका क्षेत्र कितना है? सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, क्योंकि उनके एरिया भी कैलकुलेट करेंगे, राशि गुणा उनका उगाना कहीं पर जाते हैं उसको, फिर भी वो लोग का असंख्यात अभाव होगा। और तिर्यक लोक तथा मनुष्य लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य अपर्याप्त राशि की प्रधानता है। अपर्याप्तों की भले अवगाहना छोटी है, परंतु कितने वो दूर सात राज्यों तक गए कि कितना भी गए किसी भी दिशा में, तो उनकी एरिया ज्यादा हो जाती है। तो उनकी संख्या को हम वो कहां दूर मानांतिक किया उसको गुणा करेंगे तो उनकी एरिया ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसकी प्रधानता यहाँ पर है। ना, देव नरक में जाएगा नहीं, लब्धि अपर्याप्त जीव ना देवगति बांधते ना नरक गति। हाँ, मनुष्य तीन इंच सभी एकेंद्रीय आदि सभी जगह जा सकते। इसी प्रकार उपपाद का भी कथन करना चाहिए, यानी मनुष्यों में जन्म लेने वाले। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त राशि के एक बार आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण और दो बार पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण भागहार स्थापित करना चाहिए।
मानन ठीक और हाँ।
तो उत्पाद
की अपेक्षा तो मनुष्य लोग का संख्या का भाग आ जाएगा,
छोटी संख्या।
हाँ, पर्याप्त की अपेक्षा। अब आगे बढ़ते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, अभी मिथ्या दृष्टि की बात हुई ना, अभी आगे की गुणस्थानों की बात। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात से परिणत हुए सासादन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि सामान्य मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? देखो, सासादन में भी विहार और वैक्रियक समुद्घात सासादन गुणस्थान में भी सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, क्योंकि ये करने वाले तो पर्याप्त मनुष्य है। अभी ये नक्की है ना, गुणस्थान वाले जीव है, कोई मिथ्या दृष्टि में तो अपर्याप्तों को भी लिया था, यहाँ तो पर्याप्त जीव है सारे। और मानुष क्षेत्र के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए सासादन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि सामान्य मनुष्य सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, क्योंकि सासादन में आने वाले संगी पंचेन नहीं आएंगे मरकर, तो कहाँ कहाँ से आएंगे? चारों गति क्या सासादन वाले, और सम्यक्त्व के साथ मनुष्यों में जन्म लेने वाले कहाँ कहाँ से आएंगे? देव से, नारकी से, मनुष्य से, क्षायिक वाले मनुष्य में,
मनुष्य से मनुष्य में,
मनुष्य क्षायिक वाले। तो सामान्य लोक मनुष्य सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में और ढाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते, क्यों? मरकर आने वाले ना, छठे नरक के नारके भी सासादन के साथ या सम्यक्त्व के साथ आ सकते हैं, देव में से कहीं से भी वो सम्यक्त्व के साथ आ सकते हैं, सर्वार सिद्धि से भी सम्यक्त्व के साथ आ सकते हैं, क्योंकि ग्रेवेक से सासादन के साथ ग्रेवेक तक के जीव आ सकते हैं, यानी बड़ी एरिया कैलकुलेट हो सकती है, इसलिए उसको असंख्यात गुणा कह दिया। स्वस्थान स्वस्थान, अभी तीसरे गुणस्थान वर्ती की बात होगी। तीसरे गुणस्थान में क्या नहीं होगा? वो मारणांतिक उपपाद नहीं होगी। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात रूप से परिणत हुए सम्यक मिथ्या दृष्टि उक्त मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते? उक्त ने तीन प्रकार के बताए ना, उसलिए उक्त कहा, या उसमें मनुष्य ने की बात नहीं ली उन्होंने, सामान्य और मनुष्य पर्याप्त की पहले बात उठाई थी। सामान्य मनुष्य की बात चल रही थी अभी तक, सामान्य मनुष्य तो कहते सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य क्षेत्र के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि पर्याप्त जो है ना जी, अपर्याप्तों की बात अभी यहाँ नहीं लेना। सामान्य भले कह रहे हैं पर अपर्याप्त जीव तीसरे गुणस्थान, दूसरा तीसरा चौथा आदि गुणस्थान उनके होते ही नहीं है। अब पांचवे गुणस्थान वाले उनके कौन कौन से पद हो गए? स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घात, इन पदों से परिणत हुए संयता संयत उक्त मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य क्षेत्र के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते। अब मेरा प्रश्न है, इसमें मारणांतिक उपपाद वगैरह होगा कि नहीं होगा? पांचवे गुणस्थान वाले को क्या क्या होगा? नहीं होगा, मारणांतिक भी नहीं होगा। पांचवे गुणस्थान वाला मनुष्य मरकर अभी देव जाने वाला है तो वहां तक मारणांतिक करेगा कि नहीं? कहां तक करेगा? अरे ग्रेवेट तक जाएगा ना,
ग्रेवेट तक जाएगा।
उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली है, पांचवे गुणस्थान वाले ने द्रव्यलिंग धारण कर लिया है, ऐसा हो सकता है ना? उसको मिथ्या दृष्टि होना जरूरी नहीं है ना, मिथ्यात्व के साथ द्रव्यलिंग, चौथे के साथ द्रव्यलिंग, पांचवे के साथ द्रव्यलिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी बाह्य में उन्होंने मुनिवत आचार वगैरह ऐसे शुरू कर दिए है, उसको द्रव्यलिंग कहते हैं ना, बात होगी है। पेज निकालो 208। देखती हूँ मैं, मुझे भी याद नहीं, केवल लिख के रखा है वहां पर।
बंद कर दो।
देखो 208 में क्या है, देखते हैं। यहाँ तो हाँ असंयत और संयता संयत की बात चल रही थी, चौथे और पांचवे गुणस्थान के स्पर्शन की बात है। वहां पर हम अभी क्षेत्र देख रहे हैं, वहां स्पर्शन करते अतीत काल में कहीं ना कहीं से किसी न किसी से ऊपर चले गए, यानी पूरे ढाई द्वीप में से कोई ना कोई देव में गया है उसने। तो वो पेज नंबर 208 पर देखो, मारणांतिक तीसरी लाइन, मारणांतिक समुद्घात पद पर वर्तमान जीवों ने यानी मारणांतिक वालों ने कुछ कम 6/14 स्पर्श किए हैं, क्योंकि अच्युत कल्प से ऊपर उनकी उत्पत्ति का अभाव होने से वहां गमन का अभाव और नहीं आगे
समाधान में दिया नौवें ग्रेड में।
हाँ हाँ
समाधान में
देखो यहाँ क्या कहते हैं, मनुष्य भले जाएंगे वहां पर, परंतु ये जो स्पर्शन जो बताया जाता है ना, तो तीरियंचों के क्योंकि 6/14 पूरे राजू में से ऊपर गए, तो संयता संयत तीरियंच कहाँ तक जाते हैं? तो सोलवेश्वर, तो उसकी एरिया बताई। पर मनुष्य तो जा सकते हैं ना, कहाँ तक? ग्रेवेक तक जा सकते हैं, तो वो कहाँ से जाएंगे? बीच वाले एरिया में से जाएंगे, तो पूरे 6/14 घटित नहीं होगा ये कहना। देखो नीचे के पैराग्राफ में समाधान है ना, यह दोष नहीं है क्योंकि यद्यपि देखो आगे क्या लिखा है, नव ग्रहयोगों में द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि कौमा असंयत समय दृष्टि, यानी द्रव्यलिंगी शब्द सबको लगाना, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंगी असंयत समय दृष्टि और द्रव्यलिंगी संयसा संयत जीव उत्पन्न होते हैं तो भी 7/14 भाग प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि पूरी वो एरिया कवर नहीं होती है, क्योंकि उन नव ग्रहवेकों में मनुष्य क्षेत्र से ही उत्पत्ति होती है, यानी वो बीच वाले 45 लाख योजन में से वो ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ऐसा आड़ा जाके फिर ऊपर नहीं जाएंगे, ये कहना चाहता है। अर्थात उनमें मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, तीरियंच नहीं। समझ में आई बात? यानी द्रव्यलिंगी तीन प्रकार के बताए, मिथ्या दृष्टि, असंय, हाँ। ये क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? आपके प्रश्न का उत्तर आया, चौथे गुणस्थान वाले मुनि अवस्था धारण करेंगे, भले अभी उनके गुणस्थान अभी चढ़ा नहीं है, तो क्या धारण करेंगे? द्रव्य लिंग पहले धारण करेंगे। तो कपड़े के साथ वो अपने को कैसे मानेंगे? अगर वो सम्य दृष्टि है तो की बात है, और जो मान रहे वो मिथ्या दृष्टि है, गृहित मिथ्या दृष्टि है, सिद्ध होता है, ऑर्डिनरी भी नहीं, हाल में है ना। ये सारे प्रश्नों का यहाँ मिलता है, और यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं कि हम ही सच्चे आप गलत, ऐसा कुछ नहीं है। ना अभी मिथ्या दृष्टि को भी वैकिरिक समुद्घात देखे ना हमने, अरे मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं मनुष्य, अरे अग्नि वायु का एक हो कि उनकी भी विक्रिया रहती है, नहीं नहीं रिद्धि है जो मुनियों की हो, वो बात अलग है, जिसको रिद्धि कहते हैं वो मुनियों की जो होती है वो अलग है। देखो हम अभी पढ़ रहे थे कहाँ तक जा सकते हैं, ग्रह वेग तक जा सकते हैं, इसलिए वो असंख्यात गुणा क्षेत्र कहा, क्योंकि वहां तक कि वो राजो में उसको मल्टीप्लाई करना है। ये कहाँ हम आए थे, पेज नंबर 75 पर आए थे क्या? हाँ हाँ, मारणातिक समुद्घात को प्राप्त हुए संहिता संयत सामान्य मनुष्य मिला, सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी ग्रहवेग तक जाएंगे, द्रव्यलिंगी पांचवे गुणस्थान वर्ती, यानी द्रव्यलिंगी संहिता संयत ग्रहवेग तक। अब कहते हैं प्रमत्त संयुक्त गुणस्थान से लेकर, अभी हमारे मनुष्यों की मार्गणा चल रही है ना यहाँ पर, इसलिए वो उतनी एरिया से पहले ऊपर चले जाएंगे। आप कहेंगे बाजू के स्वर्ग में जन्म लेना है, तो पहले आड़े फैलेंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो कि नहीं पहले ऊपर ही जाएंगे फिर बाद में वो आड़े हो जाएंगे। हाँ, नरक में जानते समय 3 इंच पहले आड़े जाएंगे फिर नीचे जाएंगे, ऐसा हो सकता है। प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक सामान्य मनुष्यों के यथासंभव स्वस्थान स्वस्थान आदि पदों का क्षेत्र मूल ओघ प्ररूपणा के समान जानना चाहिए, यानी लोक के असंख्यात भाग ही होता है उसको। मूल लोक प्ररूपणा में जो गुणस्थानों की बात है ना, वो मनुष्य में ही होती है, जैसे छठे से 14 तक गुणस्थानों में जो हमने एरिया घटित की थी,
खाली केवली समुद्र,
वो तो संयत सारे, तो खाली केवली क्यों, वो भी ऐसा ही
समुद्र की बात करो,
केवली समुद्र भी मनुष्य में ही होता है ना,
वो पूरा लोक हो जाए।
तो बात क्या, हम असंख्या का बात नहीं कह रहे, मूल ओघ में जो जो बातें बताई है छठे गुणस्थान से लेकर 14 तक की, वो सब यहाँ घटित होगी, क्योंकि 6 से 14 तक तो मनुष्यों के ही होते गुणस्थान, 3 इंचों में तो होगी नहीं, समझ में आई बात। इसलिए कहते वो सारे पद जो जो कुछ एप्लीकेबल है वो सब यहाँ घटित होगी। उपपाद नहीं है पर मारणांतिक है, मारणांतिक मुनिराज मारणांतिक करेंगे, मारणांतिक के काल में 6ठे में है, मारणांतिक में 4 चौथे में नहीं जाते, मरण के पश्चात देव हुए तब 4थे में गए। अब संयमी संयमी जीव कहाँ कहाँ मर कर जाएंगे, तो देवों में ही जाएंगे, तो कहाँ तक मारणांतिक कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं पर भी कर सकते हैं, ख्याल में, तभी उनका गुणस्थान अपना अपना ही है। गुणस्थान कब चेंज होगा, मरण के पश्चात, उपवाद तो उस गुणस्थान में तो है ही नहीं है, संयम के साथ कोई माँ के गर्भ में नहीं आता है, क्योंकि आने वाले तो देव से या कहीं से आएंगे, 4थे गुणस्थान से मरकर आएंगे यहाँ पर, चल में इसका ये शब्द वाक्य का अर्थ हमें भाषित होना चाहिए। पहले हमने जो गुणस्थानों में बातें देखी थी संयमियों की सारी, वो यहाँ एप्लीकेबल होती है। छठे गुणस्थान में क्या विशेषता होगी, वहाँ आहारक वाले भी होंगे, आहारक समुद्घात भी लेना, वहाँ तेजस समुद्घात उसकी जो एरिया वहाँ उन्होंने निकाल के बताई थी, एट ए टाइम करने वाले कितनी, उनकी अवगाहना कितनी, तेजस में वो 12 योजन बाय 9 योजन फैलते हैं उसकी भी बात की थी। आहारक में भी वो तो मनुष्य लोक में कहीं पर भी जा सकते हैं, उसकी एरिया वहाँ कैलकुलेट की थी। केवली की दंडाकार देखा था, फिर कपा दंड कपाट प्रतर और लोकपुरण, वो भी बात हमने विस्तार से देखी थी, वो सब यहाँ पर घटित होगा। सामान्य मनुष्यों के लिए भी, पर्याप्तों के लिए भी और मनुष्यनी के लिए भी, केवल मनुष्यनी में वो आहारक वाली बात नहीं होगी।
मारणांतिक समुद्घात छठे गुणस्थान वाला जीव करता है,
मारणांतिक समुद्घात छठे वाला करेगा, हाँ।
बारहवें स्वर्ग के ऊपर जन्म ले रहा है,
हाँ?
बारहवें स्वर्ग के ऊपर
सर्वार सिद्धि तक कहीं पर
नहीं, बारहवें स्वर्ग के ऊपर कहाँ पे भी जा रहा है,
हाँ?
तो उसका शुक्ल लेशिया ही होगा मारणांतिक समुद्घात में भी।
मारणांतिक समुद्घात के काल में, मारणांतिक समुद्घात तो अंतर्मूर्तक है,
हाँ, क्या है कि
अभी उसमें उसकी लेशा पलटेगी क्या नहीं पलटेगी, ये प्रश्न है ना, पद्म से शुक्ल पूरे मरण के समय तो शुक्ल लेशा
नहीं, बराबर है, पर मारणांतिक समुद्घात के काल में उसकी अपलेशिया पलट सकती है,
मैं नहीं कह सकूंगी, वो लेशा के प्रकरण में देखेंगे हम उसको कि उतना कौन सा लेशा का काल बड़ा है कि मारणांतिक का, ये सोचना पड़ेगा ना, अल्पभूतों में बात आएगी वो। क्योंकि अंतर्मूर्तक प्रदेश फैले है और लेशा पलटती है जल्दी जल्दी, इनका इसलिए प्रश्न है कि हाँ जो पद्म से पद शुक्ल वगैरह भी होता है कि अब अकेले शुक्ल में ही मारणांतिक करेंगे, ये प्रश्न है आपका। हाँ देखो, इसी प्रकार इस सामान्य मनुष्यों की बात की ना मूलों के प्रमाण, इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त मिला और मनुष्यनियों में समझना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्या दृष्टियों का कथन सासाधन सम्य दृष्टियों के समान है। मिथ्या दृष्टि का कथन सासाधन के समान है, इसका अर्थ क्या है? देखो सामान्य मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि तो बहुत है और बाकी ऊपर के गुणस्थान तो पर्याप्तों के ही होते हैं। अब यहाँ मिथ्या दृष्टि भी पर्याप्त, उन्होंने बता दी ना, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य नहीं, उनकी संख्या तो लिमिटेड है, तो वहाँ पर्याप्तों की अपेक्षा जो बड़ी संख्या बड़ी एरिया होती थी वैसे यहाँ नहीं होगी, बस इतना ही, यानी उनकी राशि छोटी है, यानी संख्यात में इनकी राशि है, वहाँ असंख्यात में थी, यानी ये मिथ्या दृष्टि भी संख्यात है, वहाँ तो सामान्य मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि में अपर्याप्त राशि असंख्यातों में थी, इसलिए वहाँ एरिया कुछ अलग कैलकुलेट हो सकता था। मनुष्यनियों में देखो ये महत्व की बात है, मनुष्यनीय ने क्या स्त्रीवेरी, द्रव्य से पुरुष भी हो सकता है, भाव से स्त्री है तो उसको मनुष्यनी कहेंगे, तो मनुष्यनी में असंयत सम्य दृष्टियों का उपपाद नहीं पाया जाता, यानी सम्यक्त के साथ मरकर ना कोई द्रव्य से स्त्री होता है ना भाव से स्त्री होता है, ये नियम बताए ना, ये कर्णानियों का अटल नियम है, कोई यहाँ से सम्यक्त लेके पहले नरक में उत्पन्न होता है, जैसे श्रेणिक राजा तो उनका वहाँ वेद कौन सा चल रहा है,
नपुसक
वेद, क्योंकि वहाँ एक ही वेद होता है नपुसक वेद, तो नपुसक वेद में वही एक पहले नरक को छोड़कर अन्य कहीं पर भी मनुष्यों में या तिर्यंचों में सम्यक्त्व लेकर उत्पन्न होने वाला नपुसक वेद में भी नहीं जन्मता और स्त्री वेद में भी नहीं जन्मता। मनुष्य और तिर्यंचों में जो नपुसक वेद वाले हैं तो जन्म से मिथ्या दृष्टि, परंतु वो सम्यक्त्व प्राप्त कर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। यहां तक ख्याल में आई बात? यहाँ क्या लिखते हैं, मनुष्यनियों में असंयत सम्य दृष्टियों का उपपाद नहीं पाया जाता, यानी वो जन्म से वो उसमें नहीं ले सकते, मनुष्यनी में जन्म नहीं लेते सम्यक्त्व के साथ। इसी प्रकार उन्हीं के प्रमत्त संयुक्त गुणस्थान में जो मनुष्य नहीं है और जो मुनि अवस्था धारण की है उनमें तेजस समुद्रात और आहार समुद्रात नहीं पाया जाता, क्योंकि ये रिद्धि पुरुष वेदी वालों के होगी, स्त्री वेदी और नपुसक वेदी वालों के नहीं होगी।
यानी यहाँ जो कह रहे हैं मनुष्यनियों में, यानी जो द्रव्य से स्त्री है
ना, द्रव्य से नहीं, द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री है, द्रव्य से में तो नहीं नहीं होगा,
संयत सम्यक निष्ठंग का उपपाद नहीं होता है,
जन्म नहीं होता।
यानी जो पुरुष है लेकिन भाव से
स्त्री है उसमें भी जन्म नहीं होगा,
उसको भी वो
उसमें भी उपपाद है, उसके साथ जन्म
यानी सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न
उसमें जन्मे नहीं, जन्मेंगे नहीं, यानी सम्यक के साथ जो जन्मने वाले हैं वो पुरुष वेद में ही जन्मेंगे, भाव से और द्रव्य,
भाव से और द्रव्य से दोनों से,
दोनों।
इसका ही अर्थ है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, सॉरी स्त्री गति का जीव है, अभी स्त्री में जन्म है, हाँ, द्रव्य से,
हाँ,
और भाव से भले स्त्री वेद हो उसका पुरुष कोई भी वेद हो उसको सम्यक तो नहीं होगा,
सम्यक तो होता है ना
जन्म के साथ,
जन्म के साथ सम्यक के साथ जन्म नहीं है उसमें,
हाँ।
उसको बाद में सम्यक तो हो सकता है, पांचवा गुणस्थान हो सकता है उसकी, ना नहीं। तो इनको जो स्त्री वेद वाले है मनुष्य मोक्ष हो सकता है, उनके तेजस समुद्रात आहार समुद्रात नहीं हो सकता। अब इन्हीं में संयोग केवली भगवान की बात अभी पूछेंगे। सजोग केवली, केवली खेतते ओघम, ओघ में भी दो सूत्र बताए थे, पहले गुणस्थान से अजोगी तक और संयोगी का अलग, इसलिए यहाँ पर भी अलग सूत्र बनाया कि संयोगी केवली भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं। ओघ प्ररूपणा में, ओघ प्ररूपणा यहाँ केवल गुणस्थानों की चर्चा थी, संयोगी जिनों का जो क्षेत्र कहे आए हैं तत्प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, उसमें लेके उनका स्वस्थान और विहार वत कितना है तो लोक का असंख्या कहा। तो केवली भगवान को कषाय और वेदना समुद्रात होगा कि नहीं होगा, हाँ केवली को वेदना होगी कि नहीं होगी, तो उनके वो डिसेंट्री हो गई और क्या क्या हो गया, ख्याल में आती है बस, दस लगते हैं क्या उनके, उनके कोई रोग नहीं होते, उनकी कोई वेदना नहीं होती, उनके कोई कषाय नहीं होते, पूर्ण वितरागी है। और केवल ज्ञान का महात्मा है कि उनके कोई उपसर्ग नहीं रहता, भले कोई उपसर्ग अवस्था में जिनको केवल ज्ञान होता है उनका उपसर्ग आदि सब निवारण हो जाते हैं, वो कुछ नहीं रहता बाद में, ये उनके भूख लगती है, उनके रोग होते हैं, वो भोजन आहार के लिए जाते हैं, ये सब बातें मनगढ़ंत है, उनकी वेदना ही नहीं होती, तो क्षुधा की वेदना होती होगी ना, तभी उसके इलाज करेंगे, ख्याल में है ना, ये नक्की निर्णय करना अपने को। तो स्वस्थान विहार व स्वस्थान ये तो उनके लोक का संख्या का भाग, फिर उनके समुद्घात लेना है, बाकी और कौन से होता है क्या, मरणांति उपपान विक्रिया बाकी कुछ नहीं, केवली समुद्घात उनके पाएगी। तो केवली में वो दंडाकार हमने देखा था, वो लोक का असंख्या तो अभाग है, कपाट ऐसा हो जाता है, वो भी लोक का असंख्या तो अभाग है, प्रतर में लोक का असंख्यात बहुभाग, कपाट में कितना देना
लोक का असंख्या,
क्यों
सात राज्य
भले ऐसा पहना पर ऐसे 12 अंगुली है ना, प्रतर असंख्यात बहुभाग, क्योंकि हमने वात वॉल्यूम की एरिया कैलकुलेट की थी ना, वो असंख्यात भाग हुई थी, उसको माइनस करेंगे तो प्रतर का क्षेत्र असंख्यात बहुभाग,
जो केवली भगवान समुद्घात नहीं करते हैं वो तो लोक
का असंख्यात भाग, बस क्योंकि उनका स्वस्थान है वहीं पर उनका विहार होता है, बस ये बात। इस सूत्र का अर्थ 75 पर लास्ट पैराग्राफ चल रहे, मूल ओघ सूत्र का निश्चय करके संयोगी केवली जीव लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में, लोक के असंख्यात बहुभाग क्षेत्र में ये असंख्यात बहुभाग मात्र प्रत्तर में ही होते हैं।
संख्या क्षेत्र में दंड लेने का है। दंड,
दंड, वो भी दंड भी असंख्यात विभाग में।
असंख्यात
विभाग वो स्वस्थान विहारवत और दंड समुदाय। स्वस्थान में भी विहारवत स्वस्थान में भी और दंड वाले समुद्घात में भी मिलन। असंख्यात बहुभाग प्रमाण ये प्रतर में अथवा सर्वलोक में ये लोक पूरण में इस प्रकार कहना चाहिए। अब पेज नंबर 76 पर आते हैं। असंख्यात अभाग इसलिए क्यों भले वो हम ऐसा 14 ऐसा 7 राज्य हो गया तो फिर वो जगत प्रतर प्रमाण हो गया कुछ, परंतु उसको और जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो हमको मिलता सब। वहीं तो हम केवल 12 अंगुलों से गुणा कर रहे हैं इसलिए वो जगत है। ये आप निकाल के देखो ओग में, देखो कन्फर्म करो ओग में जहाँ 14 गुणस्थान की 14वें गुणस्थान की बात है 49 पेज है। हाँ देखो 49 पेज पर लास्ट पैराग्राफ के सब कपाट समुद्घात को प्राप्त हुए केवल कितने क्षेत्र में रहते हैं। सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यात विभाग क्षेत्र में और तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में। क्योंकि तिर्यक लोक का संख्यात अभाग क्यों, तिर्यक लोक कितना है जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय लाख का 7वां भाग और यहाँ हम जो केवली का कपाट में मैक्सिमम कितना होगा ऐसा 14 राज्य ऐसा 7 राज्य यानी दो जगत प्रतर हुए 7 × 7 जगत प्रतर 2 जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय 12 अंगुल ये 36 भी अंगुल ले लो पद्मासनस्थ तो भी कितना होगा जगत प्रतर इंटू 72 अंगुल क्योंकि ये दो हमें उसको वहाँ और ये कितना है जगत प्रतर इंटू लाख का 7वां भाग इसलिए उसका संख्यात भाग होगा। पेज नंबर 76 पर आते हैं। अभी हमने 3 भेद देखे सामान्य मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं। इसमें भी मनुष्य अपर्याप्त एक लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की बात है अलग से। तो मनुष्य अपजत्ता केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे लब्धि अपर्याप्त मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात से परिणत। देखो यहाँ भी विहारवत को नहीं लिया ना ही विक्रिया लेंगे हैं। परिणत हुए लब्धि अपर्याप्त मनुष्य निश्चित क्रम से सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य क्षेत्र के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में। इसको भी संख्यात्वा भाग कहा क्योंकि वो भले आर्यखंड की जो एरिया होगी महिलाओं की जो कुछ वो भी संख्यात्वा भाग कहेंगे उसको। विन्यास क्रम से तो असंख्यात मनुष्य क्षेत्र लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों का क्षेत्र है। ये निश्चित क्रम और हमने क्या अर्थ किया था पहले मुझे याद नहीं आ रहा है। यानी उनकी राशि की अपेक्षा लेना है क्या है
संख्या की अपेक्षा हम लोग ने लिखा था ना
यानी संख्या की अपेक्षा पहले कुछ लिखा है वहाँ
हम लोग मैंने संख्या की अपेक्षा लिखा है।
हाँ वही लगता है विन्यास है उसको निश्चित क्रम है उनके रहने की ठिकाना और उसको संख्या से हम गुणा करेंगे तो असंख्यात गुणा हो जाएगा वो ऐसा लगता है। मैंने केवल अंडरलाइन किया है उसको पहले उस पर लिखा नहीं आपके उसमें कुछ लिखा है निश्चित और विन्यास को विन्यास लाना आगे कहीं लिखा है क्या? वही हो सकता है संख्या की अपेक्षा, क्योंकि तीन ही ले लिए ना, स्वस्थान वेदना और कषाय, उसमें और क्या? यहाँ तो मारणांतिक की बात नहीं है, विन्यास है, उनकी मल्टीप्लिकेशन बाय उनकी संख्या। असंख्यात मनुष्य क्षेत्र में मारणांतिक समुद्रात को प्राप्त हुए लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों का क्षेत्र ओग मनुष्य प्ररूपणा के समान है, क्योंकि ओग में सामान्य मनुष्यों में भी हमने उन्हीं की मुख्यता से बात की थी। मारणांतिक क्षेत्र के स्थापित करने पर सुच्चंगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल को परस्पर गुणित करके जो राशि आवे उसका जगत श्रेणी में भाग देने पर लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों का द्रव्य प्रमाण होता है। मनुष्य लब्धि अपर्याप्त मनुष्य टोटल कितने हैं उसकी बात है। ये सुच्चंगुल का प्रथम और तृतीय वर्गमूल को परस्पर गुणित करके जगत श्रेणी में भाग देना है, ये टोटल लब्धि अपर्याप्त मनुष्य है इतने। इसमें आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण उपक्रमण काल का भाग देने पर एक समय में मरने वाले लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की राशि का प्रमाण होता है। ये हमने देखा उपक्रमण काल और अनुपक्रमण काल, उसकी अपेक्षा से बात करते हैं, यानी उसमें उत्पन्न होने के लगातार के वो समय गिनना अलग से, और जिसमें नहीं उत्पन्न हो रहे उसको गिनना है, उसके ऊपर से मरने वालों की संख्या निश्चित कर सकते हैं। इसे पल्लोपम के असंख्यात विभाग से भाजित करके, यानी जो मरने वाले हैं उसमें से असंख्यात बहुभाग तो मारणांतिक समुद्रात करते हैं। विन्यास क्या? विन्यास लेइंग डाउन एन एडजस्टमेंट एन एम्बेलिशमेंट एन असेंबलेंस कलेक्शन, विन्यास नहीं कलेक्शन, टोटल यानी उनकी संख्या से गुणा करेंगे उसको। निश्चित क्रम, विन्यास क्रम, यानी उसको एक एक, यानी उनके अपना रहने का ठिकाना और टोटल ऐसी उसको गुणा करेंगे हम उसको। देखो मरने वाले जितने हैं पहले टोटल राशि निकाले, टोटल राशि में से मरने वाले कितने हैं तो उपक्रमण काल से उसके टोटल निकाले, तो कहते उसके लिए उन्होंने मरने वाले निकले ना, मरने वाले के लिए आवली का संख्या तो भाग का भाग दिया। अब मरने वालों में सभी तो मारणांतिक नहीं करते, परंतु फिर भी असंख्यात बहुभाग प्रमाण तो मारणांतिक करते हैं, तो कहते इसे पल्लोपम के असंख्यात विभाग से भाजित करके और एक कम पल्लोपम के असंख्यात विभाग से गुणित करके, हमने आपको बताया था 9 से भाग दो और 8 से गुणा करो तो बहुभाग आता है ना, नहीं समझे? 900 को 9 से भाग दो तो 100 आए गए, एक भाग की वैल्यू 100 आ गई और बाकी बचे कितने 800, तो उसको हमको डायरेक्ट निकालना है। तो 900 को 9 से भाग दो और 8 से गुणा करो, एक कम 9 8 से गुणा करो तो हमें डायरेक्ट बहुभाग की संख्या मिल जाती है। यहाँ पल्ले के असंख्यात विभाग से भाग दिया, एक कम पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा किया, तो मरने वालों में असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मारणांतिक करते। यहाँ तक बात समझ में? गुणित करने पर एक समय में संचित हुई मारणांतिक समुद्रात को प्राप्त लब्धि अपर्याप्त मनुष्य राशि होती है। अब लगातार ऐसे हर समय करते रहे तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण की बात है, उससे गुणा करना पड़ेगा। इस राशि को आवली के असंख्यात भाग प्रमाण मारणांतिक उपक्रमण काल से गुणित करने पर मारणांतिक काल के भीतर संचित जीव राशि का प्रमाण होता है, क्योंकि मारणांतिक संघात अंतर्मुहूर्त तक पड़ा रहता है और लगातार करने वाले जीव कितने हैं आवली के असंख्यात भाग प्रमाण। पुनः अभी जो मारणांतिक करने वाले बहुत है, उसमें दूर मारणांतिक करने वाले कम हो गए, इसलिए उसके लिए क्या करना है, पुनः इसे दूसरे पल्लोपम के असंख्यात भाग से भागित करने पर राजू प्रमाण आयाम रूप से किया है मारणांतिक समुद्घात जिन्होंने, ऐसे लब्धि पर्याप्त मनुष्यों की राशि होती है। क्योंकि जो मारणांतिक करके वहीं पर कहीं पर भी उत्पन्न होगी, पर दूर तक करने वाले जीवों की राशि निकालने के लिए टोटल मारणांतिक वालों के आवली के ये इसके असंख्यात भाग से भाग देना पल्लोपम के। प्रतरांगुल को पल्लोपम के असंख्यात भाग से भाजित करने पर राजू प्रमाण आयत क्षेत्र का विस्तार होता है।
ये कैसे हो प्रतरांगुल, तो
देखो देखो
प्रतरांगुल,
प्रतरांगुल यानी अंगुल, अंगुल का वर्ग,
अंगुल का वर्ग
और डिवाइडेड बाय
पल्लोपम के असंख्यात रेखा,
यानी असंख्यात ले लो ना।
हाँ, पर वो राजू प्रमाण कैसे आएगा प्रतरांगुल के?
देखो देखो
प्रतरांगुल
लब्धि अपर्याप्त मनुष्य ने दूर कहीं राजू प्रमाण क्षेत्र में मारणांतिक किया, भले वो मोड़ वाला होगा नहीं होगा अपने उससे कुछ नहीं लेना देना। इसके एरिया कितनी है अंगुल का संख्या, परंतु उसके दो ही डायमेंशन लेना है, तीसरे नहीं लेना,
नहीं लेना।
इसलिए घनांगुल नहीं लिया, प्रतरांगुल लिया।
अच्छा, वो
प्रतरांगुल मल्टीप्लाइड बाय राजू, ये तो देखो लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की अवगाहना कितनी है, तो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। तीन डायमेंशन लेंगे तो घनांगुल कहेंगे, अब दो ही डायमेंशन लिए तो प्रतरांगुल लिया, वही कह रहे प्रतरांगुल को पल्ले के असंख्यात भाग से भाजित किया, ये उसका क्षेत्रफल लिया। और घनफल निकालने के लिए कितने राजू मान लेते, 5-6-7 राजू जितना उसने मारणांतिक किया उसको लेंगे, ख्याल में आई बात। जीव के तीन डायमेंशन हो गए, हाइट विड्थ और ऐसे, तो उसमें से दो ही डायमेंशन लिए लब्धि अपर्याप्त की। हाँ,
तो यहाँ पे इसे बता रहे हैं लब्धि अपर्याप्त मनुष्य मारणांतिक मेजोरिटी ऑफ देम नो एक राजू के अंदर ही करते हैं, मेजोरिटी
राजू राजूओं के प्रमाण से, एक राजू के अंदर नहीं, राजूओं के प्रमाण से। एक राजू भी उसको ले लो ना एवरेज कुछ, क्योंकि वो संख्यात गुणा करेंगे तो वही उतना ही होने वाला है। राजू के प्रमाण से करने पर लिया ना, राजू प्रमाण आयत क्षेत्र का विस्तार होता है। मनुष्य भी होगा ना, मनुष्य तीरंज होगा पर लोक के किसी भी भाग में जा सकता है, सूक्ष्म में भी जाएगा। राजू प्रमाण है जो मान लेते हैं ना, कहीं पर उसने 7 राजू प्रमाण भी किया, राजू के प्रमाण में होगा ना, राजूओं में गिनेंगे ना।
अच्छा,
उसको
एक राजू नहीं लेना, राजू
एक राजू कहो या 7 राजू को, मैक्सिमम तो 7 राजू से ज्यादा कहाँ है, मिज में पड़ा है वो, कहीं पर भी जाएगा तो 7 राजू से ज्यादा नहीं जाएगा। दो मोड़ लेंगे तो और थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा राजूओं में तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ने वाला, क्योंकि लोग के भी यहाँ मध्य में है, कहीं पर इधर उधर जाएगा तो आधा राजू जाएगा, ऐसा करके पीछे आगे जाएगा तो भी 7 राजू जाएगा, समझ में आती ना बात। तो यहाँ उसकी अपनी एरिया कितनी है, तो घनांगुल का असंख्यात हो, यानी अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात, वो असंख्यात की वैल्यू पल्ले के असंख्यात भाग है। इसके बदले उन्होंने दो डायमेंशन ली, इसलिए प्रतरांगुल का असंख्यात भाग लिखा और तीसरी डायमेंशन उसकी फैला दी, हाँ प्रतरांगुल जो लिया ना वो तो लब्धि अपर्याप्त का क्षेत्रफल लिया, घनफल नहीं लिया। क्योंकि तीसरी बाजू तो राजवों में गिनेंगे हम, ऐसे और ऐसी ली और तीसरी उसने लंबी फैलाई, इसलिए ऐसा कैलकुलेट किया उसको। राजू प्रमाण आय क्षेत्र का विस्तार होता है। इसी प्रकार उपपाद का भी क्षेत्र समझना चाहिए। ये मारणांतिक तो असंख्यात समयों तक होता है,
ठीक है,
और उपपाद राशि एक समय में होती है। इतनी विशेषता है कि उपपाद राशि एक समय में संचित होती है, इसलिए ऊपर जो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार कहे आए हैं वह निकाल देना चाहिए। जब हमने मारणांतिक के एक समय में मरने वाले की पहले कैलकुलेशन किया था और उसको आवली का असंख्यात भाग से गुणा किया था, क्योंकि मारणांतिक में उपक्रमण काल लिया, एक जीव ने मारणांतिक किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, इसलिए अब यहाँ उपपाद में एक ही समय लेते हैं, इसलिए वो जो गुणा किया था वो यहाँ नहीं करना चाहिए। अब दूसरे दंड में जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग आयाम रूप से किया है मारणांतिक समुद्घात जिन्होंने, ऐसे जीवों को लाना इष्ट है। उपपाद में किसको लाना इष्ट है? उपपाद में बड़ा दंड चाहिए, क्योंकि उपपाद में जिन्होंने विग्रह गति रूप से मारणांतिक किया है, सिंगल समय में जाने वाले पूरे प्रदेश एक साथ उचरते हैं, एक साथ जंप करके जाते हैं, तो उसमें प्रदेश फैलते नहीं है। प्रदेश कब फैलेंगे? जब मान लेते मोड़ वाले जो किए हैं, किसी जीव ने ऐसा नीचे से ऐसा करके फिर ऊपर तक मारणांतिक किया मनुष्य तक, तो उसके दूसरा दंड लेना। तो दूसरे दंड में जगत श्रेणी के संख्यात्व भाग, ये तो मेजोरिटी है, जगत श्रेणी का संख्या सात राज्यों का संख्यात्व भाग लेना है। इसलिए कुछ राज्यों में है हम जो राजू प्रमाण कहते हैं, तो जगत श्रेणी का संख्यात्व भाग लेना, क्योंकि दूर से भी आने वाले मेजोरिटी लेंगे। इसलिए एक दूसरा पल्लोपम का असंख्यात्व भाग भागार स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये जो अनेक राज्यों में जो मारणांतिक करते हैं वो असंख्यात भाग प्रमाण जीव करेंगे, वहीं से वही मध्यलोक से मध्यलोक में, या उनकी मेजोरिटी होगी जो नजदीक वाले उसमें आएंगे, वो दूर से करने वाले उसके भी असंख्यात भाग प्रमाण, इसलिए और एक बार पल्ले का असंख्यात भाग से भाग दिया। तो मनुष्यों में हमने सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं और लब्धि अपर्याप्त की बात देखी। अब देवों की बात कल देखेंगे। जावानी
के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देतहु।